پاپا یہ ارشاد فرمائیے, ہمارے یہاں ایک ماحول ایسا بنتا سا جالا جا محسوس ہو رہا ہے, مشاہدہ بھی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ دنیا میں غریبوں کی اب تعداد زیادہ ہے امیروں کے مقابلے میں. تو اب جیسے ایک جگہ پر کوئی جنازہ ہی لے لیجئے, چلیں جنازہ ہوا, تو اب جیسے جہاں ایک ہی محلے کے اندر اگر کوئی عام غریب آدمی کا جنازہ ہوگا تو اس کے جنازے کی تعداد ہم دیکھتے ہیں, تو اس کی نماز جنازہ میں لوگ کتنے, یا نماز فرض کے بعد اعلان ہو جائے کہ باہر نماز جنازہ ہے تو اس میں کتنے رکتے ہیں, اور اگر کوئی بڑا آدمی ہو, کوئی اس طرح کی شخصیت ہو, تو اس کے یہاں جو جنازے کا انداز ہوتا ہے, پھر جو تعزیتوں کا جو اس میں انداز ہوتا ہے, اسی طرح اگر کوئی اس طرح میں جو بیمار ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پاپا جو غریب نادار اور اس طرح تنگ دست اور بیچارہ اس طرح کا تھوڑا سا معاشرے میں ایسا کچلا ہوا جیسے فرد ہو یا اس طرح کے کوئی ہو, تو اس کا اتنی لوگ اس کی طرف اتنا کوئی رخ نہیں ہے, کوئی رجحان نہیں ہے کہ اس کی دل جوئی, کہ اس کی عیادت یا اس کے ساتھ یا تعزیت وغیرہ کا, یہ ایک ہے, اس کے متعلق کیا آپ مدنی پولیس شاہد فرما دے؟
یہ تو واقعی ایک ایسا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جس کا کوئی حل بھی سمجھ میں نہیں آتا. کہ مالدار جو ہوتا نا, اس کا یوں کہنا تو خاما خا کا ایک روب ہوتا ہے, اس کو میں کھوٹانا روب بولتا ہوں. اب مالدار جیسے کوئی پارٹی ہے, بڑا سیٹ ہے, تو اس سے آدمی کیا تھوڑا وہ دب کے بات کرے گا, حاجی صاحب حاجی صاحب. اب حاجی صاحب ایک دمڑی بھی دے گا نہیں, ہاں یہ نہیں کہ آپ نے حاجی صاحب بولا تو یہ 100 کا نوٹ دکھایا, اور اگر بالکل سر جھکا کر نگاہیں نیچی کی ہے, حاجی صاحب بولا تو 500 کا نوٹ نکالا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, خالی خالی مسکا پالیسی ہے. تو یعنی یہ ہم لوگوں پر پارٹیوں کا پتہ نہیں کیوں روب ہے. اب یہ بیچتا کیا ہے یہ پارٹی, اپنے کو دیتا کیا, کہیں دیتا بھی نہیں ہے, پھر بھی روب ہے یار. چلو جو کچھ دے آدمی تو اس کی آدمی چاپلوسی بھی کرے, جو کہیں نہیں دیتے پھر بھی اس کا روب ہوتا ہے. ایک میں وہ جنرل بات کرتا ہوں, ورنہ کچھ دیتا بھی ہو تو اس کی بھی خوش آمد نہیں کرنی چاہیے, کہ خوش آمد کے معنی جھوٹی تعریف ہے. اگر یہ ان معنوں پر خوش آمد کرے گا تب تو ظاہر گناہگار ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک ہے کہ وہ روب ہوتا ہے. اچھا مالدار کے یہاں اگر کوئی مصیبت آئی تو واقعی اس کی دل جوئی زیادہ کی جاتی ہے, اس کی طبیعت زیادہ پوچھی جائے گی, اس کے پاس وہ عیادت کرنے کے لیے. میں نے تو دیکھا بڑی بڑی شخصیتیں, بعض اوقات اگر کوئی پارٹی بیمار ہو نا تو بڑی بڑی شخصیتیں آتی ہیں, وہ بائی ایئر آتی ہیں, یہ بھی دیکھا ہے, اور بھیڑ ہوتی ہے عیادت کرنے والوں کی. اگر کوئی بیماری ڈکلیئر ہو جائے نا الٹی سیدھی سخت, تو وہ کافی رش, یہ دیکھ, یہ اس معاشرے میں دیکھا میں نے, اور دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت کچھ, میں نے بھی دیکھا ہے, میرے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا. اچھا اب اس کے برعکس غریب اگر بیمار پڑتا ہے تو اس کو کہیں نہیں پوچھتے یار. تو یہ ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب دین کا کام کرنا ہے نا تو ایسوں کو دل جوئی زیادہ کرنی چاہیے, کہ دل جوئی کرنے سے آدمی قریب آتا ہے. اور ہم کو مسجد بھرو تو ایڑک بھی چلانی ہے, تو مالدار ہوتا ہے مسجدیں تھوڑی بھرتی ہیں, مالدار بھی کا فجر کی نماز میں آئے گا اور اس کو تو ڈاکوؤں کی گنیں نظر آئیں گی کہ میرے کو کڈنپ کر جائیں گے ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں, تو اس پر آ جائے تو یہ غریب ملیں گے. کیا کسی مالدار کو دیکھا کہ سدائے مدینہ لگا کر فجر میں قوم کو جگاتا ہو؟ نہ مالدار تو ایسی چلا کر کانچ کے کیبن میں بند ہو کر آرام فرما رہا ہے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, سارے مالدار اسے نہیں ہوتے, خدا ترس مالدار بھی ہوتے ہیں, نیک نمازی مالدار بھی ہوتے ہیں, میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں. مگر سدائے مدینہ لگانے والا کوئی میں نے مالدار آج تک سنا نہیں ہے, کوئی ہو تو مجھے پتا دے دینا کہ بھائی یہ فلاں سیٹ صاحب جو ہے نا یہ پابندی سے سدائے مدینہ لگاتے. میں نے تو غریبڑے دیکھے, غریبڑے بھی وہ کہ جن کو کوئی منہ بھی نہ لگائے, سچی بات ہے. ویسے غریبڑے ہوتے ہیں ان کو بات کرنے کی بھی وہ تک نہیں ہوتی بےچارے کی, اور یہ بولتے میں سدائے مدینہ لگاتا ہوں. یہ اس طرح کے یہ کوالٹی فکس ہے, اس میں فریش کوالٹی اتنی زیادہ نہیں ملے گی. کہ بعض داڑھی اور امامے والے بڑے موبیدار نظر آتے ہیں, लेकिन कई नए नए होते हैं बेचारे, वो जोश में अगर इमामा और दाढ़ी और सब सजा लेते हैं, लेकिन ये अभी अभी अंडर प्रोसेस होते हैं, ये जमाने कोशिश में होते हैं। तो आपको पता है अपने यहाँ तो जेलों से छूट कर आते कैदी, वो भी इमामा सजा लेकर, और ये कथई चादर डाल रही सफेद चादर, अपने को लगता है कि बहुत बड़ी मतलब मैंने कहा इल्मी शख्सियत है, और जब बात होती है तो पता चलता है कि ना 3 महीना 13 में बेचारा। तो ये अपने अवाम जो है ऐसे जो होते हैं, ये आपको मैं दिलचस्प मानता था। अब एक अच्छा खासा मौलाना, वो इमामा तो सफेद चादर तो कथई चादर, इस तरह जिस तरह मैं बैठा हूँ ना, इस तरह ये बहुत बड़ा मौलाना बैठे हुए अपनी वो माजी की यादें दोहरा रहा था कि भाई मैं तो ऐसा डाकू था, और ऐसा मतलब लेने के परले दर्जे का बत्ताखोर था कि मेरे को जाकर वहां धमकियां देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खाली मेरा फोन चला जावे या पैगाम मिल जाए कि भाई ये इसने बोला है कि इतने पैसे पहुंचा दो, तो ये मेरे को भत्ता पहुंचा जाते थे। वो इलाका शहर कौम मेरे से बेजार थी, तंग थी, लोग घरों घर बंद कर देते थे, मतलब कि ये कहीं आ ना जाए, दुकानों पर लोग गायब हो जाते थे, मेरे से बहुत डरते थे। सामने कोई आया जाता तो उसको मतलब देने के बाद धोखा दिए कि जैसे नाश्ता करके आया तो मैं इसके इधर बीच में उंगली मार के उसको मतलब उगल पाता था, कहा तूने क्या क्या नाश्ते में अंडे पराठे खाए निकाल जल्दी, तो वो सारो सारो करके मेरे पास ये टेक्टर निकल पाता था और मैं इससे इंजॉय, मैं ऐसा जालिम और साओ मतलब जानवर जैसा था। ये दावत इस्लामी वालों ने मुझ पर इंफरादी कोशिशें की, मेरे पीछे लगे, और आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, और ये दावत इस्लामी की बरकत है कि मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना में पढ़कर अब हाफिज कुरान हो चुका है। मेरा माजी तो ऐसा था, मैं बताया कि लोग मेरे से बेजार थे, और मेरे पास जो माल जमा था जब मैंने तौबा की तो जा जाकर जितना हो सका मैंने लोगों को पहुंचाया घरों पे इनके, कि ये तुम्हारा वो हैरान हो गए, मैंने लूटा था, मैं दावत इस्लामी वालों ने मुझे तौबा करवाई है। आता बड़ा रोता बेचारा कि इसका माजी ऐसा खौफनाक था, अपने ऐसे हो जाते। अरे भाई ये खुदा की शान है कि ये ऐसा खौफनाक डाकू आज मतलब इमाम बांगे बैठा हुआ है, इसी को गनीमत समझो ना यार, नहीं तो यही था जो कर तुम्हारे घर लूटता था। आप गरीबों को पूछो, ये गरीब आपको ज्यादा काम देंगे, मालदारों को भूल जाओ, ये आपकी नेकी की दावत के लिए नहीं चलेंगे, ये मुबल्लिग नहीं बनेंगे, ये काबीना और डिवीजन तो हल्का निगरान तो जिली निगरान ये नहीं बनेंगे, अगर कोई हो तो अशाजो कल मादूम, कि ना ये कम होता ये ना होने के बराबर होता, हाँ ये पैसे देंगे, इनसे आप भले पैसे लो, ये भी जिसके जिसके उसमें शहादत होगी नसीब में वो दावत इस्लामी को पैसे देगा, 100% हलाल है आपके पास तो सहे नसीब जजाकल्ला, अगर हलाल नहीं है हराम के पैसे हमको ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला पाक और पाक माल कबूल फरमाता है। जनरली सदाए मदीना आपको इसमें गरीब तबका कुचला हुआ जिसको बोला लोअर जो तबका माना जाता है, वो दीन के हवाले से लोअर नहीं होता, वो अपर होता है, लेकिन ये कि दुनिया भी एतबार से बेचारा जो लोअर कहलाता है गरीब तबका या मुतवस्सितुल हाल तबका, ये आपको मिलेगा। सदाए मदीना लगाएगा या इलाका दौरा वरा नेकी की दावत में जाएगा, सेठ साहब नहीं जाते, सेठ साहब की मेहरबानी है, हजार एहसान है कि ये नेकी की दावत वाले जो आए इनकी सुन ले, वरना सेठ साहब बोल देंगे यार अभी का तुम लोग आ गए, मेरे काम का टाइम है अभी। तो ये हजरात जो है ना, ये उमूमन मैं ये बात उमूम पर कर रहा हूं, वैसे बाज मालदार भी हमारे जिम्मेदार मिलेंगे आपको, लेकिन इनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी, बाकी गरीब 12 माह 25 माह कौन भाई करेगा सफर, तो दो दो हाथ कौन उठाएंगे, या सेठ साहब उठाएंगे, ना बाबा ना सेठ साहब 3 दिन के काफिले में तो सफर करें, अच्छा करते क्या साल में आशूरा, आशूरे में अपने शहर में जरा हालात यूं होते हैं, चलो भाई कहीं वो इधर मुजाफर में जाके वो अपनी जान की हिफाजत होगी, वहां पड़े रहेंगे 3 दिन के लिए, तो साल में एक बार अगर बात सेठिए करते भी तो साल में एक बार हो भी, छुट्टियां हो मूड हो और हालात खराब हो तो फिर भाग के वो किसी मस्जिद में छुप जाएंगे। हर महीने 3 दिन सफर वालों की लिस्ट भेजो मुझे, कौन कौन सी पार्टी करती है, बल्कि पार्टियों से जो कॉन्टेक्ट रखते हैं ना, ये भी बातों का छोटी मोटी पार्टियां होती है, या पार्टी नहीं होते पार्टी छाप होते हैं, पार्टी मार्का होते हैं, ये भी सफर का करते हैं काफिलों में, बहुत कम। ये पैसा अच्छी चीज नहीं है, इससे दिल लगाना अच्छा नहीं है। पैसा ये अमली तौर पर दीन का काम करने में स्पीड ब्रेकर है। यकीन ना है तो किसी मालदा के पीछे इंफरादी कोशिश कर लो। अगर आप तीन बार तीन दिन का सफर करवा भी लोगे तो उतनी कोशिश अगर किसी गरीब के पीछे करोगे ना तो वो 12 माह के लिए तैयार हो जाएगा शायद। एक मालदार का मुझे पता दे दो कि जो वक्फे मदीना हो, एक भी नहीं मिलेगा। वक्फे मदीना हमारे यहाँ उसको कहते हैं कि जो अपनी जिंदगी वक्फ कर दे दावत इस्लामी के लिए और वो दीन का काम करता रहे दावत इस्लामी के बताए हुए तरीकेकार के मुताबिक, जिस जहां दावत इस्लामी रखे, जिस मुल्क में रखे, अपने शहर में रखे, दूसरे शहर में रखे, अपने मुल्क में रखे, दूसरे मुल्क में रखे, इसको हम वक्फे मदीना बोलते हैं। आपको सैकड़ों वक्फे मदीना दावत इस्लामी में मिलेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन मालदार एक भी नहीं मिलेगा। इसमें तो मैं वसूख के साथ कहूंगा मालदार एक भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है मालदार के माल का स्पीड ब्रेकर ये शहादत उसको लेने ही नहीं देगा। ये मेरा मतलब है कि एक तजुर्बा है मेरा। अच्छा 25 माह का सफर एक भी मालदार नहीं मिलेगा, 12 माह एक भी मालदार नहीं मिलेगा, 92 दिन, 30 दिन शायद कोई इक्का दुक्का मिल जाए और 3 दिन में कोई 10-5 मिल जाए। बाकी दावत इस्लामी चला रहे सीधी बातें गरीब। तो मैं तो साफ वो आदमी हूँ कि मैं सेठों के पैसों पर तो पलने वाला हुई नहीं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई कान खींचने वाला भी चाहिए ना, सेठों के भी कान खींचे और सेठों का माल खाएंगे तो फिर कान कैसे खींचेंगे इनका। खैर हमारे पास बहुत सेठ है, अल्लाह की रहमत है। सिर्फ वो सेठ है कि जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी जली कटी सुनकर मुझसे बदजन नहीं ज्यादा मुतासिर होते हैं और खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी खुशफहमी है, वरना सेठ भाग जाते हैं ना, भागते नहीं इसे। हमारे सेठ बहुत सॉलिड है, अल्लाह की रहमत है। ये करोड़ों रुपए दावत इस्लामी पर मतलब निछावर करते हैं अल्लाह के फजलों करम से। अल्लाह इनको दोनों जहां की बरकतों से माला माल फरमाए और काश मतलब ये कि ये प्रैक्टिकली भी दावत इस्लामी का मदनी काम करें, काफिलों में सफर करें, मदनी इनामत पर अमल करें और इस तरह वक्फे मदीना 25वां 12वां की तरकीबें करें। ये इनकी आखिरत के लिए बेहतर है, जितना शहद डालोगे इतना मीठा होगा। तुम्हारा लेके मालदारों की भी ताजियत करें, इयादत करें और गरीबों की भी ताजियत और इयादत करें। गरीबों को अव्वलियत दें, फौकियत दें।
खुश भी बहुत होते हैं बाबा इससे, इनके
कैसे खुश होते हैं, कैसे खुश होते हैं। मुझे याद आया आपके खुश होने पर कि कट्टा शरीफ में 2 रोजा इज्तिमा था दावत इस्लामी के अवाइल में, शायद उस वक्त आप माहौल में नहीं होंगे, निगरान शूरा गालिबन नहीं होंगे माहौल में, तो हम लोगों ने किया था वहां कट्टा शरीफ में। तो वहां साथ ही करीब में एक नहर थी, तो नहर में एक बेचारा कोई लड़का होगा 10-12 साल का, वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो नहर में उतर गया होगा, गर्मियां होंगी और ये सीजन होगा ना, वो बेचारा उसमें डूब गया। और जो भी मुसलमान डूब कर मरे वो शहीद होता है, ये मदनी फूल ध्यान में रखिएगा। तो वो शहीद हो गया। हैदराबाद का वो बच्चा था, तो हम हैदराबाद में जब हमारा काफिला गया था जब, तो मैं कोई ईसाई भाइयों के साथ उस बच्चे के घर पे गया, इनके वालिद और कुछ 2-4 अजीज जमा थे वहां, मैंने ताजियत की। इसके वालिद साहब ऐसे दीवाने निकले और वो ऐसी बात कर गए कि यार हैरत में डाल दिया। ये बोला कि मेरा बच्चा तो खैर गया और खूब गया, ना ये बच्चा जाता ना तुम लोगों के कदम मेरे गरीब खाने पर आते। गरीब आदमी था बेचारा, कि हमारे घर पे वरना ऐसे नेक लोग और भी थे ना, दाढ़ी वाले इमामे वाले, बोले ऐसे लोग हमारे नसीब का कि हम गरीबों के पास आए, ऐसा मतलब तो ऐसे तासुर है। तो गरीब ऐसे खुश हो जाते हैं। तो गरीबों के यहाँ जाना चाहिए, तो इससे इनकी नस्लों की इस्लाह होगी और ये लोग दावत इस्लामी की तरफ और करीब आएंगे। मालदारों का भी जाए, लेकिन ऐसा ना जाए मालदारों के यहाँ कि आप तोहमत की जगह पर खड़े हो जाए। सिर्फ मालदारों के यहाँ जाएंगे, बड़े लोगों की मतलब वो हम यहाँ मिलाते रहेंगे, तो सारे कोई भी बोलेगा यार ये तो पैसे वालों के पीछे मतलब ये लेके घूमता है। और इत्तेफाक ये है कि दावत इस्लामी का जो सबसे पहला मुबल्लिग था ना, वो भी बहुत गरीब आदमी माना जाता था। गरीब हो या ना हो, माना जाता था बहुत गरीब आदमी है। तो वही ना कि इमाम की दौलत होते हुए गरीब काहे का। वो इमाम गजाली ने बड़ी प्यारी बात की कि गरीब आदमी जो शिकवा करता है कि मैं गरीब हूं, बहुत फकीर हूं, वो गौर करे कि अल्लाह तआला इनके एक उमूम पर बात फरमाई है इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने कि उमूमन ऐसा होता है कि मालदार के बाद अक्ल कम होती है। नाराज ना हो मालदार साहिबान, मालदारों के बाद अक्ल कम होती है और गरीबों में फकीरों में अक्ल ज्यादा होती है। मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा करमल्लाह तआला वजहुल करीम का दलील देने के लिए इमाम गजाली ने कौल भी नकल फरमाया है कि मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा करमल्लाह तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अक्ल भी रिज्क का हिस्सा है। तो जिसको तो अक्ल ज्यादा दी जाती है उसको माल बसा औकात अक्सर कम दिया जाता है। अब ये के ये बोलता है कि मैं गरीब हूं, ये क्यों मतलब बेवकूफी करता है, नाशुक्री करता है, नादान है ये, ऐसा बोलता है और अपनी गुरबत के रोने रोता है। अल्लाह ने इसको अक्ल जैसा रिस्क दिया हुआ है, अक्ल जैसी दौलत दी हुई है, अक्ल जैसी नेमत दी हुई है। अगर इसको ये कहा जाए कि चल फुला मालदार के जिसमें अक्ल कम है, तेरी अक्ल उसको दे दी जाती है और उसका माल तुझे दे दिया जाता है, कबूल करेगा? तो कभी भी अपनी अक्ल जो है कोई माल के इवज बेचने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये गरीब जो अक्लमंद होगा वो तैयार नहीं होगा। जो फट करके हाँ बोल देगा इसका मतलब इसमें अक्ल है ही नहीं। अक्ल इतनी बड़ी नेमत है, अक्ल ही से तो रब की मारिफत होगी, अक्ल ही से जन्नत दोजक की पहचान होगी। अक्ल वाले का ईमान मजबूत होता है। जो बेवकूफों का सरदार होता है तो वसवसों के पीछे घूमता होता है। तो जितने भी मालदार हैं, मैं सबको नहीं कहता कि बेवकूफ होते हैं, लेकिन उमूमन मालदारों में अक्ल कम होती है। मालदार आपको अय्याशियों में ज्यादा मिलेंगे, मालदार गुनाहों में ज्यादा मिलेंगे, गरीब निस्बतन गुनाहों में कम होंगे। मालदारों में तकब्बुर ज्यादा नजर आएगा, गरीबों में कम नजर आ जाएगा। जो भी अक्लमंद होगा मेरी बातों को अगर सोचता चला जाएगा ना, तो समझ में आएगा कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि ने बजा फरमाया। इन्हें जो माल के पीछे मारा मारा फिरता है, मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी ब्रांच कायम करेगा, मुख्तलिफ अकाउंट खुलवाएगा, इधर दौलत उधर दौलत, ये सौदा वो सौदा, ये माल खींच लिया वो माल खींच लिया, इधर दुकान खोल दी उधर शाख खोल दी उधर ब्रांच खोल दी, ये अक्लमंद नहीं होता। ये अब बेवकूफ अपना वक्त जाया कर रहा है कि वो कीमती लम्हात, वो कीमती सांस जो इसको याद इलाही में गुजारने चाहिए थे, ये याद माल में बसर कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इसको याद मौला के लिए वक्त फिर नहीं मिलता, क्योंकि इसको जो टेंशन होता है ये माल का होता है। फिर माल चोरी होता है तो टेंशन, डाकू आया तो टेंशन, कोई सौदा कैंसिल हुआ तो टेंशन, अगर माल लिया और भाव गिर गया तो टेंशन, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन होता है। आप अल्लाह वालों की जिंदगियों पर नजर डालें, सहाबाए किराम की जिंदगियों पर नजर डालें, इनमें आपको मालदार बहुत कम मिलेंगे, बिल्कुल बहुत कम मिलेंगे। और जो मालदार मिलेंगे ये उन हस्तियों में से मिलेंगे जिनमें अक्ल वाफिर मिकदार में है, क्योंकि हर मालदार अक्ल से कोरा होता ऐसा नहीं है। ये उमूम पर बात की है इमाम गजाली ने कि उमूमन ऐसा होता है कि मालदार में अक्ल नहीं होती। तो जो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, वो सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सबसे बड़े मालदार थे सहाबा में। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मालदारी के वाकयात मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह गिनती सहाबाए किराम मिलेंगे जो मालदार थे, बाकी अक्सरियत इसमें गरीब और मजलूम अफराद थे, गुलाम एक तादाद थी गुलामों की जो जुल्म से सहकर वो इस्लाम की तरफ आए, गुरबा तो गरीबों में से दीन गरीबी से आए ना, गरीब से दीन आया, और हदीस शरीफ में या गरीबों से या गरीब से दीन आया और गरीबों में ये जाएगा खत्म होगा पूरा होगा, इस तरह की रिवायतें मौजूद है। तो अब ये कि इस तरह के मालदार में अगर अक्ल होती तो ये कभी भी वो माल के माल को बढ़ाने की ज्यादा फिक्रें ना करता, क्योंकि माल जितना है बढ़ाएगा इतना बवाल बढ़ता है, कयामत का हिसाब कोई आकर बोल तो दे कि मैं दे सकता हूं, कभी भी नहीं दे सकता। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनका पाई पाई हलाल था यकीनन, क्योंकि हर सहाबी आदिल है, कोई सहाबी फासिक नहीं है, सबके सब सहाबी कतई जन्नती है। तो ये सहाबी अब्दुल रहमान बिन औफ चूंकि सब सहाबा से मालदार थे इसलिए ये हिसाब की वजह से, तो हलाल माल पर हिसाब है ना, तो हिसाब की वजह से इतनी ताखिर इनकी होगी कि सारे सहाबा में सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे हलाल कतरी के हिसाब। तो अब ये मालदार अक्लमंद है कि इसको तो हलाल हराम का पता ही नहीं, हराम इसको ये समझता है मैं पाई पाई की जकात निकालता हूँ, मैं सारा हलाल कमाता हूँ, मैं तो किसी हक नहीं दबाता, मैं तो टाइम पर उसका कर्जा भी दे देता हूँ, किसी को वो आटिया भी नहीं मारता हूँ, माल भी बताकर सुथरा बेचता हूँ, मेरा सब हलाल। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं पता होता, ये कई बार ये सूद में मुबतला हो जाता है, इसको इसको मसाइल ही नहीं पता होते, क्योंकि मसाइल सीखना फर्ज है, जो तिजारत करता है उसको तिजारत के मसाइल सीखना फर्ज है, जानना तो उसको मसाइल आते हूँ। अब नहीं जानेगा, खाली खुशफहमी में रहेगा कि मैं किसी का यूं नहीं करता हूँ, मैं किसी का हराम नहीं खाता हूँ, मैं किसी का पैसा नहीं दबाता हूँ, ये इन बातों में ये सच्चा भी होता है, लेकिन चूंकि इसको मालूमत नहीं होती तो जहालत की वजह से ये सूद में पड़ जाता है, बहुत बाद औकात मामूली गलती की वजह से आदमी सूद में जा पड़ता है, उसको पता नहीं होता, तो सीखना उसका जरूरी है। तो इसलिए जो मालदार होता है ये उमूमन अक्ल उसमें कम होती है। यहां ये बात अर्थ कर दूं कि देखिए किसी मालदार से आपकी फ्रीशिप हो तो उसको ये मत कहना कि वो देखा ना इलियास कह रहा था तू वाकई बेवकूफ है, तो फिर इसका दिल दुखेगा। तो अभी इस वक्त तो जाहिर है कि मैंने किसी मालदार का नाम तो लिया ही नहीं, मैं तो जनरल बात करता हूँ, और मैं ये पहली बार थोड़ी इस तरह, मैं तो मालदारों के कान खींचता रहता हूँ, मालदार हंसते रहते हैं, वो समझते हैं हमारा बापा है, हम भले बोले और कोई नहीं बोले, बापा भले बोले, तो मैं ये जनरल बात करता हूँ, और दुनिया में तादाद मालदारों की जो मुझसे मोहब्बत करती है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये समझती है कि मतलब ये हमको हमको जन्नत की तरफ ले जा रहा है, जहन्नम से घसीट रहा है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हमको हमारी आखिरत की बेहतरी के लिए कर रहा है, अंदर छुटा और मेरी क्या किसी से जाती दुश्मनी थोड़ी है, मालदार तो बहुत मीठा मीठा लगता है, माल माल खिलाता है, अच्छे अच्छे कीमती तोहफे देता है, गरीब आदमी तोहफा देता भी है तो आठ आने वाला कार्ड देता है, 2 रुपये वाला रिसाना देता है, और मालदार देगा तो जाहिर है कि वो अपने हिसाब से वो तोहफा देगा, तो यूं मालदार तो किसको मीठा नहीं लगता, लेकिन मतलब ये मिठास जो है ना ये ऐसी अपनी चाट नहीं लगनी चाहिए कि हमको हक गोई से महरूम कर दे, हक गोई अल्लाह ताला हमारी सलामत रखे उसको और बरकत दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد